रात के तकरीबन 12 बज रहे थे। ब्लैक कलर की लगभग 4 गाड़ियां मुंबई से आउट एरिया को तरफ जा रही थी। इनमें सबसे आगे वाली कार में विजय ओबेरॉय था। वो सभी बड़े से सफ़ेद घर के आगे रुकी। वहां फार्म्स के बीचों बीच आहान का फार्म हाउस बना हुआ था। विजय ओबेरॉय ने दूर से उस फार्म हाउस को देखा और अपने चेहरे पर तीखे तेवर दिखाते हुए कहा, आहान, चालाक तो तुम बहुत हो। हर बार तुम एक स्टेप आगे रहे हो, लेकिन मैं भी तुम्हारा बाप हूँ। अगर तुम एक कदम आगे हो तो मैं तुमसे 10 कदम आगे रहता हूँ। अब देखता हूँ तुम कैसे दामिनी को मुझसे दूर रखते हो। तुमने उसे मुझसे दूर करके अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। तुम शायद भूल गए हो मैंने तुम्हारे साथ क्या क्या किया है और मैं क्या क्या कर सकता हूँ। एक बार मुझे दामिनी मिल जाए, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ विजय ओबेरॉय असल में क्या चीज़ है। बचपन में जो डर तुम्हारी आंखों में था, वो फिर से पैदा करना होगा। ये फार्म हाउस इस सड़क से तकरीबन आधा किलोमीटर दूर था। विजय ओबेरॉय अपनी कार से नीचे उतरा और तकरीबन एक दर्जन आदमियों के साथ फार्म हाउस की तरफ जाने लगा। थोड़ी देर बाद सब फार्म हाउस पहुंच गए और फार्म हाउस की सिक्योरिटी देखी गई। सिक्योरिटी के नाम पर यहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, ना कोई आदमी ना ही कोई इलेक्ट्रिक वायर जो किसी को अंदर आने से रोके। विजय ओबेरॉय को ये देखकर हैरानी हुई और उसे इस बात पर शक होने लगा, क्या सच में दामिनी यहाँ पर है? क्योंकि अगर दामिनी यहाँ पर होती तो यहाँ की सिक्योरिटी टाइट रहती, काफ़ी सारे आदमी इस जगह पर निगरानी कर रहे होते, मगर यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। विजय ओबेरॉय ने मन ही मन खुद से कहा, कहीं ऐसा तो नहीं मैं आहान को लेकर गलत था? क्या उसने दामिनी को कहीं और कैद करके रखा है? अगर यहाँ पर कैद करके रखा होता तो सिक्योरिटी टाइट रहती। फिर भी अब यहाँ पर आ गया हूँ तो एक बार चेक करके जाऊँगा। मुझे अपने मन में कोई भी सवाल नहीं रखना। आहान काफ़ी चालाक है तो वो कुछ भी कर सकता है। हो सकता है उसने यहाँ पर सिक्योरिटी इसलिए ना रखी हो ताकि किसी को इस बात पर शक ना हो यहाँ पर दामिनी को रखा गया है। वो मुझे भी धोखे में रखना चाहता है। उसने अपने आदमियों को ऑर्डर दिए, इस घर का चप्पा चप्पा छान मारो, कोई भी कोना, कोई भी कमरा, कोई भी जगह रहनी नहीं चाहिए। उसके ये ऑर्डर करते ही सभी आदमी फार्म हाउस के अंदर घुसे और छानबीन करने लगे। विजय ओबेरॉय वहीं बाहर चहलकदमी करने लगा। चहलकदमी करते हुए वो आहान के बारे में ही सोच रहा था और उसे बुरा भला कह रहा था। विजय ने गुस्से से कहा, मुझे बचपन से ही तुम्हें समझ जाना चाहिए। तुम्हारा इलाज कराने के बजाय खत्म कर दिया होता तो आज तुम मेरी दामिनी को मुझसे अलग नहीं करते। मेरे सारे शेयर अपने भाई आयुष के नाम नहीं करते। मेरे पास अब बैंक बैलेंस में भी कुछ नहीं बचा। मुझे मेरी गलतियों की ही सज़ा मिल रही है, तुम्हें जिंदा रखने की सज़ा मिल रही है। मैं इस वक्त यहाँ रात में तुम्हारे फार्म हाउस के सामने हूँ और तुम पता नहीं इस वक्त क्या कर रहे होंगे। ज़रूर अपने घर में अपनी आलीशान जिंदगी जी रहे होंगे, बोलकर वो जोर से चिल्लाया। विजय और उसके आदमियों को वहाँ कुछ नहीं मिला था तो वो हताश होकर वापस लौट गए थे। आहान अपने घर वापस आ गया था। घर आते ही उसे वहाँ आयुष मिला जो उसी के आने का इंतजार कर रहा था। तुम घर पर कब आए और क्यों? मैं तुम्हें हॉस्पिटल छोड़कर आया था, आहान ने हैरानी से पूछा। आयुष ने जवाब दिया, मॉम दवाई लेकर सो गई थी और मुझे अकेले वहाँ पर सुकून नहीं मिल रहा था, इसलिए मैं घर पर आ गया। आयुष अपने चेहरे से परेशान लग रहा था। आहान उसके पास आया और उससे पूछा, क्या हुआ, सब ठीक है ना? क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही? अगर तुम्हें कुछ खराब लग रहा है तो मैं डॉक्टर से बात कर लेता हूँ। तनु से मैं अभी मिलकर आया हूँ, उससे तुम्हारी बात करवा देता हूँ। अगर कोई और परेशानी है तो मुझे बता दो, कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं। नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बस ये सोच रहा हूँ, जब डैड को मॉम के एक्सीडेंट के बारे में पता चलेगा तब उन्हें कैसा फील होगा? वो तो पूरी तरह से टूट जाएंगे। जब मुझे झटका लगा तो उन्हें कितना बुरा लगेगा, आयुष ने अपने डैड को लेकर कहा। उसे विजय ओबेरॉय की सच्चाई नहीं पता थी, इसलिए वो उसके लिए परेशान हो रहा था। आहान ने मन ही मन खुद से कहा, काश मैं तुम्हें उसकी सारी सच्चाई बता पाता, इसके बाद तुम उसकी 1% भी फिक्र नहीं करते। तुम नहीं जानते आयुष उसने क्या क्या किया है। अगर तुम ठीक होते तो मैं तुम्हें इस बारे में सब बता देता। मैं उसके लिए तुम्हारी ये फिक्र भी नहीं देख पा रहा हूँ, क्योंकि वो आदमी ये डिजर्व नहीं करता। वो बस नफरत डिजर्व करता है, सिर्फ मेरी नहीं, तुम्हारी भी, मॉम की, हम सबकी। आहान मन ही मन काफी गुस्से में था और ये गुस्सा विजय ओबेरॉय के लिए था, मगर वो उसको ये गुस्सा नहीं दिखा सकता था। उसने अपने चेहरे पर एक हल्की मुस्कान दी जैसे सब ठीक हो और फिर आयुष को कहा, एक बार मॉम की तबीयत अच्छे से ठीक हो जाए फिर हम उन्हें इसके बारे में बता देंगे, तब तक उन्हें अपने बिजनेस पर ध्यान देने दो। आहान ने उसके कंधे पर हाथ रख उसे थपथपाकर निकल गया। अब उसे चाहत से बात करनी थी। आखिरी बार उन दोनों की बातचीत कुछ खास नहीं रही थी। आहान कमरे में आया तो चाहत उसे अपने बाल बनाते हुए दिखी। वो पूरी तरह से खोई हुई थी और एक ही जगह पर कंघी घुमा रही थी। आहान कमरे में आ गया था मगर फिर भी उसने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया था। आहान आगे गया और चाहत को पीछे से हग कर लिया। आहान के छूते ही चाहत अचानक से होश में आई और उसने आहान को देखा। वो उसकी तरफ पलटी और अपने बालों को ठीक करते हुए बोली, आहान, आप आ गए, आपका भाई मुझे इस बारे में पता ही नहीं चला, तब जब तुम बड़े ही गौर से खुद को आईने में देख रही थी, आहान ने कहा। उसने उसकी चिन पर हाथ रखकर उसका चेहरा ऊपर किया और फिर पूछा, खाना खाया मेरी डॉल ने? चाहत ने नामे सिर हिलाकर कहा, आहान आपको पता है मैं आपके बिना खाना नहीं खाती, मगर हाँ मैंने आयुष को खाना खिला दिया था और उसे दवाई भी दे दी थी। ये कहकर चाहत ने मन ही मन कहा, अब मुझे आपके गुस्से पर भी काम करना है और जल्दी से जल्दी आपको ठीक करना है। इसके बाद मैं यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। चाहत के इस जेस्चर से आहान के फेस पर हल्की स्माइल थी। उसने हाँ में सिर हिलाकर कहा, ठीक है डॉल, चलो खाना खाते हैं। आज मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। खाना खाते वक्त मैं तुम्हें इस बारे में बताऊंगा, देखना तुम इसे सुनकर खुश हो जाओगी। आहान ने मन में कहा, मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। चाहत ने मन में सोचा, ऐसा क्या बताने वाले हैं आहान आप? मैंने आज आपसे पढ़ाई की बात की थी, कहीं आप मुझे उस बारे में तो कोई सरप्राइज नहीं देना चाहते? वो अपने चेहरे से थोड़ा कंफ्यूज दिख रही थी। अब वो कभी भी अपने चेहरे से खुश नहीं दिखती थी, क्योंकि उसकी खुशी अब छिन चुकी थी। वो अपनी माँ को खो चुकी थी और उसके बाद वो खुद को काफी अकेला महसूस कर रही थी। आहान उसके अकेलेपन को दूर करने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन चाहत के लिए ये काफी नहीं था। आहान उसे नीचे लेकर आया, जहाँ उसके सर्वेंट ने उन दोनों को खाना सर्व किया और फिर यहाँ से चला गया। जब वो खाना सर्व कर रहा था, तब वो चाहत को अजीब नजरों से देख रहा था और चाहत को ये देखकर फिर से वही फीलिंग आने लगी थी जो उसे हमेशा आती थी। इसी वजह से वो खुद को यहाँ पर कंफर्टेबल नहीं फील कर रही थी। आहान ने भी ये चीज देख ली थी, मगर अभी के लिए उसने इस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया था।
आहान ने उसे अपने हाथों से खाना खिलाते हुए कहा, तुम काफी कमजोर हो गई हो। ओके, तो मैंने कुछ प्लान किया है। तुम्हें पता है, आज तुमने मुझे जो भी कहा, उन बातों ने मुझ पर काफी असर किया। एक लड़का होने की वजह से मैं कभी नहीं समझ पाऊंगा कोई लड़की किसी लड़के से क्या एक्सपेक्ट करती है, लेकिन तुमने मुझे काफी अच्छे से अपनी बात बताई। तुमने मुझे बताया एक लड़की के लिए उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी जरूरी होती है। आहान उसे वो बात बताने वाला था जो उसे बतानी थी। हाँ, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट इस घर में बनी रहे, मगर फिर भी मैं इसमें चूक गया। आहान ने जब उसे काफी सारा खाना खिला दिया, तब उसने खींचकर चाहत को अपनी गोद में बैठा लिया। उसने चाहत के बाल उसके कान के पीछे करते हुए कहा, लेकिन अब इस घर में तुम्हारी ये सेल्फ रिस्पेक्ट कभी हर्ट नहीं होगी। बोलते हुए आहान ने चाहत को उठाया और फिर उसका हाथ पकड़कर खड़ा हो गया। चाहत मन ही मन सोच रही थी, आखिर आहान आप क्या करना चाहते हैं? आहान ने क्लैप किया तो सभी हाउस हेल्पर्स वहां जमा हो गए। जब सारे सर्वेंट वहां पर आ गए, तब आहान ने उनकी तरफ देखा और सख्त आवाज में कहा, तुम सबको मैंने यहाँ पर कुछ बताने के लिए बुलाया है। इस वक्त तुम लोगों के सामने जो लड़की बैठी है वो कोई और नहीं बल्कि मेरी खास है। इसके साथ मेरा वो रिश्ता है जो किसी हस्बैंड का उसकी वाइफ के साथ होता है। ये मेरी डॉल है। इस घर में जितनी रिस्पेक्ट मुझे मिलती है, उतनी ही रिस्पेक्ट इसे मिलनी चाहिए। मैं काफी दिनों से नोटिस कर रहा हूँ ये सब बातें। अगर ऐसा दोबारा हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बोलते हुए आहान की आवाज तेज हो गई और सब ने अपना सिर झुका लिया। उसने इशारा किया और फिर सभी को यहाँ से जाने के लिए कहा। जब सब चले गए, तब आहान वापस चाहत के पास आया और उसके सामने बैठते हुए बोला, देखा डॉल, मैंने कहा था ना आज तुम्हारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तुम्हारी प्रॉब्लम यही थी ना, घर के स्टाफ मेंबर तुम्हें रिस्पेक्ट की नज़रों से नहीं देखते। अब सब तुम्हें रिस्पेक्ट की नज़रों से देखेंगे। किसी की कितनी हिम्मत नहीं होगी वो तुम्हें डिसरिस्पेक्ट करे। चाहत ने ये सुनकर अपने मन में कहा, आहान मैं ये नहीं चाहती थी। आप मेरी बातों को नहीं समझ पाए। मैं जानती हूँ आप मुझे खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं, मगर मुझे ये सब नहीं चाहिए। मुझे जो रिस्पेक्ट चाहिए वो ऐसे नहीं मिलेगी। आहान खड़ा हुआ और उसका हाथ पकड़कर उसे कमरे में ले गया। वहां आहान ने रूम आकर चाहत के होठों को किस करना शुरू कर दिया और फिर वही हुआ जो हर रात होता था। चाहत ने उसे रोका भी नहीं। कुछ देर में आहान थककर सो गया था, जबकि चाहत की आंखों से नींद कोसों दूर थी। जब आहान उसके साथ सो रहा था, तब चाहत उसके चेहरे की तरफ देखते हुए धीरे से बोली, आहान मुझे वो रिस्पेक्ट चाहिए जहां आप मेरी मर्जी के बिना मेरे साथ कुछ ना करें, मेरी हाँ या ना मायने रखे। अब चाहे मेरी मर्जी हो या फिर ना हो, मुझे आपका साथ देना पड़ता है। पहले अपनी मॉम के लिए और अब शायद आपकी गुस्से वाली बीमारी के लिए। हमारे बीच कभी कुछ ठीक नहीं होगा, इसलिए जब आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे, मैं आपकी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। चाहत की आंखों से आंसू थे जिससे आहान अनजान था। उसके रोने की आवाज से आहान उठ ना जाए, इसलिए चाहत ने अपना मुंह कसकर बंद कर लिया।